कमला विशुद्ध बुद्धि एलथ सौवथा तिहुवन सिर से हरया पसियंतु भड़ारया सौवे तिहुवन भवन पसरिय पच्छखव बोह किरण परिवेढ़ो उयो वियणत्तवणो अरहंत दिवायरो जयहु तिरयण खगणिहाय णुत्तारिय मोह सेन सिरणिवहो आयिरिय राउ पसिवउ परिवालिय भविय जियलो अन्नाण अंधयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम उज्जो जेहिक पसियंतु सया उवच्छाया दुहतिवति साविनडिय तिहुवन भवियाण सुठुरायेण परिठवियादम पवा सुअजलवाण पयानेन संधारिय सीलहरा उत्तारिय चिरपमाद दुस्सीलभरा साहु जयंतु सव्वे शिव सुह पह संठियाहु निगलिय भया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नवमी पुस्तक जो चतुर्थ खंड है, वेदना अधिकार या वेदना खंड जो है, उसमें कृति अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है अपने। उसमें अभी हम पृष्ठ 112 पढ़ते हैं। यहाँ अपना विषय तो ग्रंथ की प्रमाणता का और अर्थ की प्रमाणता की बात चल रही है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ शुरू करते हैं तो सबसे शुरू में मंगल करते हैं, उसके बाद किस निमित्त से ग्रंथ की रचना हुई है वो बताते हैं निमित्त, फिर ग्रंथ का प्रमाण कितना है उसको बताया जाता है, उसके बाद कर्ता कौन है ग्रंथ के उसकी बात चलती है, और फिर वो पहले तो प्रमाण कहा था ग्रंथ का, अभी ये ग्रंथ प्रमाण कैसे है, ग्रंथ की प्रमाणता बताते हैं। तो हमने कर्ता दो प्रकार देखे थे, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता, और अर्थकर्ता महावीर भगवान हैं, उनके द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है। उसके बाद ग्रंथ की प्रमाणता बताने के लिए वो जो वक्ता है तो उसके प्रमाणता से ग्रंथ की प्रमाणता कही जाती है, यानी भगवान महावीर कैसे उसकी बात यहाँ चलेगी, क्योंकि वे तीर्थंकर है, वीतराग सर्वज्ञ है, तो उनकी वाणी सत्य ही होती है, ये बात बताया जा रहा है यहाँ पर। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से प्ररूपणा कर रहे हैं। ये ग्रंथ प्रमाण क्यों है, क्योंकि मूल में ये बात महावीर के द्वारा बताई गई है और वहाँ से चली आ रही है, और महावीर भगवान को यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से प्ररूपित कर रहे हैं। द्रव्य में उनके शरीर की बात बहुत विस्तार से बताई, और क्षेत्र में अभी ये समोचरण का वर्णन चल रहा है। कल बात यही आई थी ना उस प्रवचन सार में आई थी कि समय सार में आई थी, हाँ मगर स्वामी जी के ही प्रवचन में आई थी। कौन से प्रवचन में आई थी, समय सार में आई होगी ना, नहीं अच्छा जो ठीक है,
जो प्रमाण पुरुष है उसका वचन पूर्ण,
हाँ पुरुष के प्रमाण से वचन की प्रमाणता होती है, ये बात वहाँ आई थी। तो यह पुरुष प्रमाण द्रव्य क्षेत्र काल भाव से घटित कर रहे, शरीर की अपेक्षा भी तीर्थंकर ही है ऐसी बात बताई थी। अभी क्षेत्र में समोचरण का वर्णन चल रहा है, यहाँ अभी हम पृष्ठ संख्या 112 तक आ गए हैं। हमने बहुत विस्तार से देखे कि बाहर जो धूली साल नाम ये भित्ती जो होती है ना, इसे तट जिसको कहते हैं, उसके अंदर वो वापिया वगैरह होती है, बीच में वो वीथी यानी महामार्ग होते हैं, उसमें बीच में मानस स्तंभ रहते हैं, और फिर अलग अलग वन रहते हैं, प्रासाद रहते उसमें, ये सारे असंख्यात देव वहाँ होंगे, तो वहाँ भी बहुत सारी प्रतिमाएं भी होती है, अरिहंतों की प्रतिमाएं भी होती है, चैत्य वृक्ष भी होते हैं, ऐसी सारी वर्णन करते करते अभी हम अंदर जो सभा मंडप जिसको कहते हैं या श्री मंडप भी कहते हैं उसको, जब बाहरा कोठे जहाँ होते हैं, तो ये कोठे जो बने हैं चार तो मार्ग है और उनके बीच बीच में हर एक में बीच बीच में तीन तीन मार्ग बनेंगे, ये तीन तीन कोठे बनेंगे, तो उसकी भित्तियाँ भी मणिमय होती है, स्फटिक मणिमय होती है, खम्भे भी और ऊपर का जो छत होता है वो भी आकाश स्फटिक से निर्मित होता है, इसकी बातें हमने कल देखी थी। तो बारह कोठे कौन कौन से उसके भी हमने देखा था, मुनि संघ का होगा, कल्पवासिनी वगैरह वगैरह। अब यहाँ हम आ गए हैं नीचे से तीन तीन छः दो आठ लाइन तक हमने देखा था, ये बारह कोठों के बाद जो बीच में जो पीठ होता है जिस पर भगवान विराजमान है, तो उसमें तीन कटनी होती है, सबसे ऊपर तो भगवान विराजमान है, उसके नीचे वाले यानी दूसरे कटनी पर जो है हाँ मंगल द्रव्य होते हैं और ध्वजाएं भी होती है, और उसके नीचे के पीठ में यानी नीचे से पहला पीठ पहला कटनी, तो वहाँ पर यक्ष धर्म चक्र को लिए हुए वहाँ खड़े हुए होते हैं। समोसरण मंदिरों की रचना आपने देखी होगी या इसके आगे कभी जाके देखना, तो वहाँ ये यक्ष चक्र पकड़े हुए ऐसे दिखाए जाते हैं वहाँ। अभी हमने देखा ना ये नीचे से आठवीं लाइन में तीन कटनी युक्त पीठ से अंधकार को नष्ट करने वाला है, ऐसा हमने देखा था। अब आगे गिरती हुई पुष्प वृष्टि से निरंतर किए गए मंगल उपहार से युक्त है, यानी वहाँ निरंतर पुष्प वृष्टि होती है, अनेक कोड़ा कोड़ी मधुर स्वर वाले वादित्रों के शब्द से त्रिभुवन रूपी भवन को बहरा करने वाला है, यानी मधुर स्वर होते हैं, अनेक कोड़ा कोड़ी वहाँ वादित्र बाजे या जो कुछ साढ़े बारह करोड़ ऐसे हमने हाँ अन्य भी बाजे बजते होंगे। मरकत मणि से निर्मित स्कंध व उपस्कंध से सहित, अभी ये क्या कहते हैं, यहाँ जो अशोक वृक्ष है ऊपर के जहाँ भगवान विराजमान उनके ऊपर अशोक वृक्ष पाया जाता है, वो कैसा है उसकी बात कर रहे हैं, तो मरकत मणि से निर्मित है, वो कोई वनस्पति कायिक क्या अशोक वृक्ष नहीं है, वो रत्न निर्मित रत्न से निर्मित है, मरकत मणि से निर्मित स्कंध व उपस्कंध से सहित, स्कंध यानी वो नीचे जो बड़ा थड़ जिसको कहते हैं ना ट्रंक वृक्ष का, आप क्या कहते हैं उसको थड़, हाँ, और उसके बड़े बड़े जो शाखाएं हैं ये तो मरकत मणि से निर्मित है, उपस्कंध यानी उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं, पद्मराग मणिमय प्रवालांकुरों से युक्त यानी पद्मों से युक्त, पद्मराग मणि के पत्ते यानी वृक्ष के जो पन्ने हैं वो पद्मराग मणियों से युक्त होते हैं, नाना प्रकार के फलों से युक्त, भ्रमर कोयल व मधुकर के मधुर स्वरों से विराजित, तथा जिन शासन के अशोक जो शोक से रहित ऐसा अशोक, अशोक तो वृक्ष का भी नाम है और ये अशोक को बताने वाला है इसलिए उसको ये अशोक वृक्ष कहते हैं, तो जिन शासन के अशोक अर्थात आत्मसुख के चिन्ह स्वरूप अशोक वृक्ष से समस्त जीवों के शोक समूह को नष्ट करने वाला है, चंद्र किरणों के समान धवल, अभी अशोक वृक्ष की बात हुई है? फिर चंद्र किरणों के समान धवल कुछ कम एक योजन विस्तार वाले, अभी अशोक वृक्ष का भी वो बहुत डिटेल्स होते हैं, उसके प्रमाण कितना होता है, जितने भगवान की ऊंचाई है हाइट उससे मेरे ख्याल से 12 गुना होता है ऐसा कुछ है ना, आपको याद नहीं है, 12 गुना होता है उससे अशोक वृक्ष, और ये अशोक वृक्ष ने अशोक का ही वृक्ष नहीं होता है वो, तो जहाँ मेरे ख्याल से जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ है वो उनका अशोक वृक्ष होता है, अलग अलग हर एक भगवान के वो अशोक वृक्ष भी अलग है। ऑफकोर्स ये तो है तो रत्न से निर्मित, परंतु ये अशोक जो वृक्ष होता है, आपने अशोक वृक्ष देखा होगा, ये आम के पत्ते जैसे पत्ते होते हैं, ये बाजू में भी है। तो हर एक को वही अशोक वृक्ष नहीं है, उसकी रचना नहीं होती है, जो वहां वृक्ष है उसी को अशोक वृक्ष कहने में आता है। परंतु ये तो है तो सारे रत्न से निर्मित है, इसलिए नाना प्रकार के फल भी कहा वहां, क्योंकि रत्न जड़ी थी है ना सारा ये। ये अशोक वृक्ष की बात है। अब ये भक्तामर में जो वर्णन है ना स्वामी जी ने उस पर प्रवचन किए, बहुत गजब के है वो तो। जैसे वो पढ़ेंगे आप, आपको याद है ना, चंद्र किरणों के समान धवल, कुछ कम एक योजन विस्तार वाले, ओहो, स्वच्छ धवल एवं स्थूल मोतियों की मालाओं के समूह के शोभायमान पर्यंत भाग से संयुक्त तथा वर्धमान भगवान के तीनों लोगों के अधिपतित्व के चिन्ह रूप ऐसे गगनस्थित तीन छत्रों से सुशोभित है। अशोक वृक्ष के बाद ये तीन छत्र जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये सारा जो विशेषण है वो तीन छत्रों का है। ये तीन छत्र, एक छत्र के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे जो तीन छत्र है, नीचे बड़ा होता है कि नीचे छोटा होता है, हाँ नीचे छोटा होता है और ऊपर, हाँ नीचे बड़ा है ऊपर छोटा और उसके ऊपर उससे छोटा, यहाँ देखना आप। ये जयपुर में एक बार वो वहाँ छत्र वगैरह बनाते हैं ना मूर्ति के ऊपर, ऐसे बेचते हैं, तो ऐसे उल्टा लगाया था। हमने बोला ये क्या किया है, उल्टा लगाया, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बोला बाल बोध का पुस्तक निकाल के देखो क्या है उसे। देखो ये पूरा ये तीन छत्रों का वर्णन है। अभी यहाँ से हम फिर पढ़ते हैं, ये तीन छत्र कैसे, नीचे से तीसरी लाइन, चंद्र किरणों के समान धवल है और उसका विस्तार कितना है, कुछ कम एक योजन, इतने बड़े तो ये तो छत्र है। और वो मोतियों के मालाओं से सुशोभित है, और वो मोतियों भी कैसे, स्वच्छ धवल एवं स्थूल मोतियों की मालाओं से, समूह से शोभायमान है। मोतियों की अनेक मालाएं, खाली एक माला नहीं, मालाओं के भी समूह कहे ना, पर्यंत भाग से संयुक्त शोभायमान, पर्यंत भाग से, पर्यंत यानी अंतिम भाग, यानी उसका जो छत्रों का जो अंतिम उसका एंड है, एज है, उसमें मोतियों के मालाओं के समूह लगे हुए हैं। और वो कैसा चिन्ह है, तो वर्धमान भगवान तीन लोगों के अधिपति है, इसलिए वहां तीन छत्र उसको सूचित करने वाले हैं। और गगन स्थित है, किसी वृक्ष से टंगे हुए है ऐसी कोई बात नहीं, अधर है वो। ये सारी देवों की निर्मित रचना है ना ये, तो ऐसे ही वो बिना किसी आधार के ऐसे ही गगन स्थित है। पंच शैलपुर अर्थात राजगृह नगर के नैऋत्य दिशा भाग में, ये शैल किसको कहते हैं, पंच शैल का अर्थ क्या है, पर्वत, वहां पांच पर्वत है राजगृह में। आप यात्रा में गए होंगे, चौथी टुक तो कोई करते नहीं है, हाँ किया था, अच्छा हमने तो पांचों का किया जब हम 1975 में गए थे यात्रा में। चौथी टुक वैसे थोड़ी करने में, ये सभी पर्वतों पर दर्शन करने के लिए वहाँ जाने की सुविधा है और ऊपर मंदिर भी बने हुए हैं वहाँ, तो चौथे काल की कितनी मूर्तियाँ हैं ऊपर, ये चौथे टुक के ऊपर खास। पंचशैल यानी राजगृह, सब जगह गए थे हाँ, परंतु बाद में ये चौथे को ज्यादा करके ओपन नहीं करते, हम हजार के भी ज्यादा, हजार से भी ज्यादा लोग थे तो उस समय तो सब खुला था, नहीं तो दो चार यात्रियों के लिए वो तो रिस्क की बात है ना, इसलिए अभी छोड़ते नहीं है वैसे। हाँ तो पंचशैलपुर नाम है उसका, पंचशैल यानी पांच पर्वत है, इसलिए उस शहर को पंचशैल भी कहते हैं, उसी को राजगृह कहते हैं। अर्थात राजगृह नगर के नैऋत्य दिशा भाग में अत्यंत विस्तृत विपुलाचल के मस्तक पर स्थित है। ये समोसरण कहाँ लगा था पहले में? पहले तो विपुलाचल पर्वत पर, तो वह विपुलाचल मस्तक पर स्थित है। तथा जो देवों द्वारा रचे गए चार द्वारों से, अभी ये जो समोसरण है वो देवों के द्वारा रचा गया है, और चार द्वारों से गंगा के प्रवाह के समान प्रवेश करने वाले, यानी कितने जीव प्रवेश करते होंगे, उसके गंगा का प्रवाह का उपमा दी। प्रवेश करने वाले देव, विद्याधर एवं मनुष्य जनों को मोहित करने वाला है। कौन है ये? समोसरण की बात चल रही है। जो कहाँ स्थित है? राजगृह नगर के नैऋत्य में जो विपुलाचल पर्वत है उसके ऊपर स्थित है। पर्वत पर, ऐसा पर्वत में लगा हुआ ना, पर्वत के ऊपर, यानी वहाँ के आकाश में ऊपर, क्योंकि वो अधर रहता है ना, ऊपर जमीन पर स्थित नहीं रहता। ऐसे समोसरण मंडल में, ये अभी तो जितना हमने वर्णन देखा वो सारा समोसरण का था, ऐसे समोसरण मंडल में जिनेन्द्र देव के शरीर की किरणों रूपी क्षीर समुद्र में डूबी हुई समस्त देह से संयुक्त यक्षेंद्रों के हाथों के समूहों से ढोरे गए चामरों से आच्छादित, वहाँ यक्ष जो है वो चामर ढोते हैं, वो 64 चामर आदि आता है ना उससे, ये सारी उनकी विभूति कहलाती है। आच्छादित 8 दिशाओं को विषय करने वाले, वो 8ों ही दिशाओं में यक्ष स्थित है और वो चामर ढोते हैं। और दिव्य आमोद सुगंध युक्त एवं देवों के श्रेष्ठ अनेक मणियों के समूह से रचे गए गंधकुटी रूप प्रासाद में स्थित सिंहासन पर आरूढ़ वर्धमान भक्तारक ने तीर्थ उत्पन्न किया। यानी वहाँ वो सिंहासन भी है, वो जो हमने देखा ना ऊपर की पीठ है ना नीचे, उसमें पहली कटनी दूसरी कटनी और ऊपर जो है, तो वहाँ सिंहासन है। सिंहासन भी उसके लगे हुए नहीं है वो, तो वहाँ कमल की भी रचना होती है और उसमें अधर से भगवान विराजमान होते हैं। उनके ऊपर 3 छत्र है, उसके ऊपर अशोक वृक्ष है आदि, पुष्प वृष्टि होती है, ये चंवर ढरते हैं, ये दुंदुभी नाद होता है, ये सारी जो ये वर्णन है भगवान का। तो यहाँ वर्धमान भगवान ने उपदेश दिया था, ये बात हो गई। क्षेत्र को बता रहे कहाँ उनका उपदेश हुआ था समोसरण में, तो उसका ये समोसरण का वर्णन आ गया। गंधकुटिया ने जहाँ ये प्रासाद कहा ना, गंधकुटी रूप प्रासाद में स्थित सिंहासन, वहाँ जहाँ ये भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, यहाँ तो समोसरण है, और जिनके समोसरण नहीं होते उनकी भी छोटी सी जो रचना होती है उसको गंधकुटी कहते हैं। अभी यहाँ भी ऐसी कोई रचना होगी सिंहासन के भी नीचे, जिसको यहाँ गंधकुटी कहने में आ रहा है। आपने एलोरा देखा होगा, तो अंतिम जो गुफा है, 44 है ऐसा कुछ होगी, मुझे ये नंबर याद नहीं है, तो उसमें गंधकुटी की रचना है। वो पूरा जो जिसको केव है ना, वो गुफाएं लेनी है वहाँ, तो ये गंधकुटी है वहाँ पर। यानी जिसका समोसरण नहीं होता है परंतु अकेली गंधकुटी होती है, यानी उसमें ऐसे एक फर्स्ट फ्लोर वगैरह ऐसा सब दिखाते वहाँ एक क्या कहते हैं, प्रासाद में स्थित। प्रासाद का अर्थ होता है महल, सिंहासन जिस पर है उसी को गंधकुटी, मैंने वही तो बताया सिंहासन कहाँ है। हाँ, तो प्रासाद का अर्थ क्या होता है? प्रासाद यानी कोई ठिकाना। एक्चुअली हम तो महल को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं, तो वहाँ तो कोई ऐसे महल जैसी रचना नहीं है, परंतु सिंहासन जिस पर स्थित है उसी को यहाँ गंधकुटी कहा है। मैं जो बात बता रही थी वो अलग ही है, मैं तो ये एलोरा केव की बात कर रहे हैं। तो आखिर के जैन लेनी है सारे जैन केव्स, तो उसमें अंतिम जो केव है वहाँ ये गंधकुटी बताते हैं, यानी जिनका समोसरण नहीं मात्र गंधकुटी होती है वो वहाँ पत्थर में ऐसे बनाई हुई है। वहाँ से ऊपर जाने को भी एक रास्ता है, किसी को पता नहीं है, ये वहाँ के जो स्थानिक लोग है वो ले जाते हैं। बिल्कुल पहाड़, आधा पहाड़ चढ़ के ऊपर जो है तो वहाँ पर बहुत अच्छे अपने बहुत बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं, और बिल्कुल यानी जिसको वंदनीय पूजनीय ऐसी खंडित नहीं है। और वहाँ से बहुत ऊपर एकदम टॉप पर ऐसे कुछ गुफाएं दिखाते हैं, कुछ रचना ऐसी दिखाते हैं, वो कहते वो चारण मुनि वहाँ आते थे। ये एलोरा वाले वहाँ जो अपना गुरुकुल है वहाँ, और वहाँ के कोई बहुत सीनियर लोगों ने हमको वो जाके दिखाया था सारा। नहीं तो आमतौर पर हम जाते तो कुछ नहीं पता चलता, तो आधे रास्ते तक जाना भी बहुत मुश्किल है, और ऊपर तो खाली दिखाई देता है हाँ ऊपर कुछ है करके। देखो शंका, क्षेत्र प्ररूपणा तीर्थ की प्रमाणता की ज्ञापक कैसे है? आपने तो क्षेत्र बताया, समोसरण की रचना बताई है, और तीर्थ की यानी उपदेश की, तो उपदेश प्रमाण हो सकता है, ये तीर्थ के कारण उपदेश प्रमाण है आप कैसे कह सकते हो? उसका समाधान, क्योंकि वह वर्धमान भगवान की सर्वज्ञता का चिन्ह है। हमने देखा था पहले भी तीर्थंकर प्रकृति के उदय में ये सारी बातें होती है, तो ये उनके सर्वज्ञता का चिन्ह है। शंका, भगवान वर्धमान सर्वज्ञ थे, यह कैसे सिद्ध होता है? समाधान, 14 विद्या स्थानों के बल से समस्त भुवन को देखने वाले, अवधि ज्ञान से अपने अवधि क्षेत्र के भीतर स्थित संपूर्ण जीवों के कर्मस्कंधों को प्रत्यक्ष करने वाले, तथा 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से नवकल केवल लब्धियों को और अघातिया कर्मों के संबंध से मूर्त भाव को प्राप्त ऐसे जिन भगवान को देखने वाले सौधर्मेंद्र द्वारा की गई उनकी पूजा चूंकि बिना सर्वज्ञता के बनती नहीं है, अतः सिद्ध है कि वर्धमान भगवान सर्वज्ञ थे। चौदह विद्यास्थान, चौदह पूर्व क्या लेना उसमें, मुझे भी वो पता नहीं लगा 14 विद्यास्थान क्या है। ये अवधि ज्ञान वाला तो ये तो सौधर्म इंद्र की बात होगी ना, सौधर्म इंद्र का ये विशेषण है। सौधर्म इंद्र कैसा है? तो 14 विद्या वाला है, अवधि ज्ञान वाला है, और ऐसे ऐसे भगवान को देखने वाला है। फिर से ये सौधर्म इंद्र कैसा है उसको बताया, और सौधर्म इंद्र के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, ये अन्यथा बन नहीं सकती ऐसा कहते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि भगवान के तो अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान की बात किसकी है? सौधर्म इंद्र की है, ये मैंने भी 5 बार पढ़ा है। देखो, 14 विद्याओं के बल से समस्त भुवन को देखने वाले सौधर्म इंद्र द्वारा की गई पूजा, एक बात, अवधि ज्ञान से अपने अवधि क्षेत्र के भीतर स्थित संपूर्ण जीवों के कर्म स्कंधों को प्रत्यक्ष करने वाले सौधर्म इंद्र द्वारा की गई पूजा तथा चौदह क्या सौधर्म इंद्र हो सकता ना, वो देशावधि है ना उसका, कर्म स्कंदों में उसका विसर सोप जैसा ही कर्म स्कंद, कर्म परमाणु नहीं लिया उसमें, और ना ही कर्म का समय प्रबद्ध लिया है। कर्म स्कंद में कारमान शरीर वो विसर सोप जैसा ही वाला ले सकते हैं उसमें। अभी तथा क्या, तथा भगवान को देखने वाले सौधर्म इंद्र द्वारा, वो भगवान कैसे है? तीसरे लाइन में जो अभी विशेषण है वो भगवान का है, तो भगवान कैसे है? तो 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से नव केवल लब्धियों को, ये नव केवल लब्धियां क्या है? चार घाती कर्म तो मालूम है, घातीय चार कर्म कौन से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, बरोबर। उनके नाश से नव केवल लब्धियां प्रकट हुई है, यानी नव क्षायिक भाव प्रकट हो गए। अब ये चार घातियां गए हैं तो कौन से चार नव क्षायिक भाव प्रकट होंगे? हाँ, केवल ज्ञान कहो या अनंत ज्ञान की बात है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्यादि पांच वो लेना नव केवल लब्धि में, क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र। ये नव केवल लब्धियों को, ये नव केवल लब्धि धरंत ऐसा कहते हैं अरिहंतों को, रमा धरंत। और अघातिया कर्मों के संबंध से, अभी घातिया तो नष्ट हो चुकी है परंतु अघातिया का संबंध है अभी, वेदनीय आयु नाम और गोत्र है उनके, मूर्त भाव को प्राप्त, अभी मूर्तत्व चल रहा है ना उनका, अमूर्तत्व गुण प्रकट नहीं हुआ है, जब अघातिया का नाश हो जावे तब जाके होगा उसको, ऐसे जिगन भगवान को देखने वाले। तीसरा जो है वो भगवान का विशेषण है पूरा, और पहले जो दो बताए 14 विद्या और अवधि ज्ञान, वो सौधर्म इंद्र की बात है। ऐसे सौधर्म इंद्र द्वारा की गई उनकी पूजा, यानी सौधर्म इंद्र आकर उनकी पूजा करता है, चूंकि बिना सर्वज्ञता के बनती नहीं है, सर्वज्ञता के बिना ऐसी पूजा संभव नहीं है, सौधर्म इंद्र आकर पूजा करे ऐसी बात अन्यथा अन्य जीवों के लिए नहीं बन सकती। अतः सिद्ध है कि वर्धमान भगवान सर्वज्ञ थे, ये पूजा के द्वारा उनकी सर्वज्ञता सिद्ध की है। सर्वज्ञ की सिद्धि, और एक पॉइंट मिल गया, चलो। यह हेतु ये बताई ना कि सौधर्म इंद्र आकर पूजा करे, ऐसे आपने पूजा की बात कहीं और सुनी थी? हाँ, देव आकर पूजा करते, उसकी नहीं, कहाँ जाकर उसकी बात नहीं है, अन्य कोई इतना पढ़ लिया है इसलिए आकर देवों ने पूजा की। दस पूर्व जो है, दस पूर्वी को, दस पूर्वी होते हैं, दसवें पूर्व का उनका अभ्यास हो जाता है तब देव आकर पूजा करते, परंतु सौधर्म नहीं आता तभी। ये भवनवासी व्यंतर वगैरह आते हैं, और 14 पूर्व क्या हो जाता है तब भी आते हैं देव और उनकी पूजा करते हैं, दोनों जगह देव आकर पूजा करने का वो ऐसा है लिखा। देखो, यह हेतु, कौन सा हेतु दिया? भगवान के सर्वज्ञता के लिए हेतु क्या दिया? सौधर्म इंद्र द्वारा उनकी पूजा की जाती है। यह हेतु विद्यावादियों की पूजा से व्यभिचरित नहीं होता, यानी इसका अर्थ क्या है? तो विद्यावादी यानी विद्यानुप्रवाद पढ़ने वालों के भी देव आकर पूजा करते हैं, इसलिए उनके भी सर्वज्ञता मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्प रुद्धि व ज्ञान युक्त व्यंतरों द्वारा, सौधर्म कैसा है? अधिक ज्ञान वाला है, अधिक रिद्धियों वाला है, वो तो उसके सभी कर्मस्कंधों को भी प्रत्यक्ष देखने वाला है ना, वो तो वो भी भगवान के कर्मस्कंधों को देखते हुए ना, यहाँ कोई घाते नहीं रहे और आघाते, और इसके ज्ञान भी अधिक है, रिद्धि भी अधिक है, अवधि ज्ञान भी अधिक, जो कुछ है सब। अल्प रिद्धि व ज्ञान युक्त व्यंतर देवों द्वारा की गई पूजा का महारिद्धि व ज्ञान से, महारिद्धि और महाज्ञान अधिक ज्ञान, उद ज्ञान से संयुक्त देवेंद्रों द्वारा, देवेंद्र ने यहाँ सौधर्म को देवेंद्र कहा, देवों का इंद्र, देवेंद्रों द्वारा की गई पूजा के साथ कोई साधर्म्य नहीं है। दशपूर्वी वालों के व्यंतर आकर पूजा करते हैं, परंतु यहाँ तो व्यंतरों का ज्ञान और रिद्धि दोनों ही सौधर्म के साथ उसकी तुलना नहीं होगी, अत्यंत अल्प है, वे उनकी पूजा करते हैं परंतु वहां सौधर्म नहीं आता पूजा करने के लिए। सौधर्म कहाँ जाएगा? ये तो भगवान के समोचरण में जाके वहां उनकी पूजा करेगा। अथवा देवेंद्र की कांतिहीनता को प्राप्त होने वाली व्यंतरकृत पूजा में, हाँ क्या लिखा है, लिखा है देवेंद्र की इच्छा से, अच्छा हाँ हाँ हम देखते हैं, हाँ देविंदिच्छाए विच्छायम गच्छन्ति ये, विच्छायम गंतव्य नहीं कांतिहीनता का, देविंदिच्छाए विच्छायम गच्छन्ति ये वेंतर पूजाए इंदकय जीन पूजाए एव दुवत्ता भावेन वैधम्मी आदो वा। आपके यहाँ क्या क्या लिखा है, देवेंद्र की इच्छा से विच्छायम का अर्थ, नहीं नहीं वो मैंने सुना आपने क्या कहा, मैं ऊपर प्राकृत पढ़ रही हूँ पहली लाइन साहम्मा भावादो, देविंद इच्छाए यानी देवेंद्र की इच्छा के अनुसार विच्छायम गच्छन्ती है, या विच्छाया ने कांतिहीनता का, ये इच्छा से शब्द डालना है यहाँ, देवेंद्र की इच्छा से देविंदिच्छायाए देविंदी छायाए छायाए वो इच्छायाए इच्छाए नहीं है इच्छायाए देविंदी छायाए विच्छायम गच्छन्ती है विच्छाया का अर्थ कांतिहीनता लिया तो देविंदी छायाए में देवेंद्र की का ही कांति से चलना चाहिए इच्छा से शब्द बराबर घटित नहीं हो रहा है इच्छाए नहीं है इच्छायाए है इच्छाया देवेंदी छाया है देखो छाया है उसके सामने उसकी कांति कम है हाँ इच्छा याए नहीं इच्छा से अर्थ बराबर घटित नहीं होता है देविंदी छायाए विच्छायम गच्छन्ति है विच्छाय का अर्थ क्या है कांतिहीनता तो छाया का अर्थ कांति चाहिए यानी देवेंद्र की कांति अधिक है और इसकी कांति कम है यानी उस पूजा का महात्म्य अधिक है और इसका कम है ऐसा लेना उसके इच्छा बराबर घटित नहीं हो रहा है हाँ यानी वो पूजा और ये पूजा इसमें किसकी महत्ता है इस तरह से लेना चाहिए उसमें इच्छा शब्द घटित नहीं हो रहा है देविंदी छायाए विच्छायम गच्छन्ति है एक बार छाया और एक बार विच्छाया ऐसा लिया यानी उसकी उसकी कांति और इसकी कांतिहीनता विच्छाया ने कांतिहीनता ऐसा हाँ देवेंद्र की कांति से शब्द ठीक प्रतीत होता है देवेंद्र की कांति से कांतिहीनता को प्राप्त होने वाली व्यंतरकृत पूजा में इंद्रकृत जिन पूजा के समान स्थिरता न होने से ध्रुवत्ता भावेण ये ध्रुवता का अभाव है दोनों में साधर्म्य का अभाव है शंका जिन द्रव्य अर्थात जिन शरीर की महिमा को देखने वाले वो देवेंद्र स्वरूप के जानकार जीवों के वह जिन देव की सर्वज्ञता का कहा गया साधन भले ही बन सकता हो साधन यानी एक क्या कहते हैं कोई भी बात सिद्ध करनी है तो उसके लिए जो कोई हेतु दिया जाता है उसको यहाँ साधन कहते हैं। जैसे किसी पर्वत पर हमें धुआं दिख रहा है, तो धुआं ये साधन हुआ जिसके द्वारा वहाँ अग्नि है, ये बात सिद्ध होती है। तो यहाँ जो कहते हैं कि जो जिन द्रव्यों को देखने वाले ने जिनेन्द्र के शरीर की महिमा को जो देख रहे हैं वहाँ प्रत्यक्ष, और जिनको देवेंद्र का स्वरूप जानते हैं, जो कि देवेंद्र ऐसे होते, इतने ज्ञान के धारी होते, वो भगवान को और वो अन्य किसी की पूजा नहीं करते, ऐसा यदि स्वरूप पता हो तो सर्वज्ञता सिद्ध हो सकती है, तो वह साधन बन सकता है अपनी बात सिद्ध करने के लिए। किंतु वह शेष जीवों के नहीं बनता। जैसे हम आप भगवान के शरीर को अभी देख नहीं रहे हैं प्रत्यक्ष, यहाँ कोई समोसरण नहीं विद्यमान है, तो हम कैसे विश्वास करें कि ये सर्वज्ञ थे या सर्वज्ञ है? क्योंकि उनके उक्त साधन विषय ज्ञान का अभाव है। अभी भी सर्वज्ञ को नहीं मानने वाले जीव क्यों? उनके उस संबंधी ज्ञान का अभाव है। और साधन ज्ञान से रहित व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के पास ये साधन नहीं है, कौन सा, ये ज्ञान नहीं है, ना ही उनके शरीर को वो देख रहा है उसकी महिमा को, और ना ही उनको देवेंद्र का स्वरूप पता है, ऐसे जीवों के साध्य विषय ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। साध्य क्या है हमारा? भगवान की सर्वज्ञता सिद्ध करनी है। महावीर यानी वर्धमान भगवान सर्वज्ञ है या थे, ये बात सिद्ध हो करनी है। परंतु वो सिद्ध करने के लिए जो यहाँ हेतु साधन बताया है, वो उनके पास वो साधन वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए वो साध्य की भी वहाँ सिद्धि नहीं होती। क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग दोष आता है, ये शंकाकार की शंका है। अन्य लोग कैसे उस पर विश्वास रखें? उसका समाधान इस उत्तर में कहा गया है कि इस प्रकार से जिन भाव के ज्ञापनार्थ, जिन भाव यानी जिनेन्द्र भगवान का जो स्वरूप है वो बताने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए, ज्ञापनार्थ यानी उसको बताने के लिए भाव प्ररूपणा करते हैं। अभी शरीर के द्वारा भी नहीं और इंद्र आकर पूजा करते हैं इसलिए भी नहीं, परंतु अब यहाँ भाव की प्ररूपणा करेंगे, यानी ना ही उनके शरीर के द्वारा, ना ही समोचरण और सौधर्म इंद्र आकर पूजा करता है इसलिए भी नहीं, परंतु भाव यानी उनका स्वरूप ही डायरेक्ट बताएंगे अभी जिनेन्द्र भगवान का। वह इस प्रकार है, जीव जड़ स्वभाव नहीं है, क्योंकि विसंवाद रहित स्वभाव वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अजड़ स्वभाव जीव पाया जाता है। क्या कहते हैं? जीव जड़ स्वभाव ही नहीं है, अचेतन नहीं है। जीव है वो अजीव नहीं है ना? क्यों? विसंवाद रहित स्वभाव वाले, विसंवाद यानी उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई विरोध, उससे रहित ऐसे स्वभाव वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से, स्वसंवेदन यानी अपने को ही जानना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अजड़ स्वभाव जीव पाया जाता है, यानी चेतन स्वभाव जीव पाया जाता है। अजड़ स्वभाव यानी चेतन, और अचेतन जीव चेतना गुण के संबंध से चेतना स्वभाव ही नहीं है। कोई ऐसा कहेंगे कि जीव तो अचेतन है परंतु चेतना गुण का उसके साथ संबंध हो गया है इसलिए वो चेतन है, ऐसे मानने वाले भी है। हो ज्ञान अलग है और जीव के साथ उसका समवाय हो गया है इसलिए वो जानता है। वहां भी दलील की थी आचार्य ने, तो ये खंभा भी जड़ है तो उसके साथ भी जान जुड़, ज्ञान कहीं भी जुड़ सकता है, तो कोई भी अचेतन पदार्थ जानने लगेगा, तो ऐसा भी नहीं, ये बात सिद्ध करते हैं। ये इतनी उल्टी पुल्टी बातें बताने की जरूरत क्यों? क्योंकि अन्य मति ऐसा मानते हैं, तो इसके द्वारा उनका निषेध हो रहा है और सही बात का प्ररूपण हो रहा है। तो अचेतन जीव है और चेतना गुण के संबंध से चेतना स्वभाव होता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर स्वरूप की हानि का प्रसंग आता है, यानी उसके चेतना तो सिद्ध नहीं होता, जब तक ज्ञान उसके साथ आकर नहीं मिले, और गुण कभी कहीं बाहर से आता है तो द्रव्य का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। गुणों के समुदाय को ही नष्ट जीव द्रव्य कहते हैं, और वो गुण जो है वो नित्य तादात्म्य संबंध से रहते हैं। वहाँ पर कोई निकल जावे या बाहर से आकर मिल जावे, टेम्पररी, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे ने दूसरी बात, जीव चेतना रहित हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से उसके अभाव का प्रसंग आता है। जीव को अगर अजीव यानी अचेतन मानेंगे, चेतना रहित मानेंगे, तो जीव का लक्षण ही नहीं रहा, तो जीव भी नहीं रहेगा। वह इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान के द्वारा तो आत्मा का ग्रहण होता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का व्यापार बाह्य अर्थ में पाया जाता है। हमें ये तो अनुभूत चीज है, आँखों से हम बाहर की सब चीज़ें देखते हैं। आँख के पीछे क्या चल रहा है अंदर ब्रेन में, कितनी ब्लड वेसल्स है, क्या क्या हो रहा है, कुछ पता लग रहा है? अरे वो तो इतने नज़दीक है उसके, खोपड़ी में अंधेरा है क्या उजाला है, कुछ पता नहीं अपने को। नाक से तो ये सारे बाहर का सुगंध दुर्गंध आदि जो बातें होती है, और दुर्गंध को दूर करने के लिए कितने वो सारे क्या फुसफुस आपके भाषा में है, स्प्रे, बॉडी टाल्क और ये जितने कुछ इत्तर वित्तर लगाते हैं ना, परंतु उसी नाक के द्वारा, उसी इंद्रिय के द्वारा अंदर कितनी गंदगी है उसका पता नहीं लगता है। ये बाह्य की ओर है ना सारे, कर्णेन्द्रिय भी बाहर की ओर की आवाज सुनता है। हाँ, बाह्य व्यापार ये सब में समझना, स्पर्श रस गंध वर्ण कर्ण सब। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चेतन स्वभाव होने से उक्त प्रत्यक्ष जड़ जीव में संभव नहीं है। क्या कहते हैं दूसरी बात, क्या बताई थी किसी ने, जीव चेतना रहित होगा, तो आचार्य कहते ऐसा नहीं हो सकता। यदि जीव को जड़ ही मान लेंगे तो क्या क्या दोष आएगा वो बता रहे। यदि जीव जड़ होगा तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा को जान नहीं सकता, यदि जड़ होवे तो। क्योंकि चेतन स्वभाव होने से उक्त प्रत्यक्ष जड़ जीव में संभव नहीं है। यह स्वसंवेदन जो है जानने का, वो तो चेतन में होता है, और आपने तो जीव को अचेतन मान लिया, इसलिए वो भी संभव नहीं है। पहले कहा था इंद्रियों के द्वारा भी उसको जानना संभव नहीं है, वो तो बाहर की ओर है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जान सकते हैं, परंतु आपने अगर जड़ माना है तो वो भी संभव नहीं है। अनुमान से भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता, ये कुछ याद आ रहे हैं, ये सारे हमने एक गाथा में देखे थे, अलिंग ग्रहण के बोल। क्योंकि दोनों प्रकार के प्रत्यक्षों के अविषयभूत जीव के साथ अविनाभव संबंध रखने वाले लिंग का ग्रहण संभव नहीं है। यानी जीव यदि जड़ होगा तो वो अनुमान से भी आत्मा को नहीं जानेगा। जैसे जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, फिर भी अनुमान तो कर सकता है कि यहाँ जो जानने का कार्य हो रहा है वो तो शरीर तो नहीं करता, तो वहाँ आत्मा को ही होना चाहिए, ये अनुमान से जानना है। अनुभव के पहले अनुमान तो होगा, परंतु अलिंग ग्रहण में क्या कहा था, अनुमान मात्र का विषय नहीं है। यानी केवल अनुमान का ही विषय हो और अनुभव में आ ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे वहाँ मात्र शब्द डाला था। अब यहाँ कहते हैं यदि जीव जड़ हो तो वह अनुमान भी नहीं कर सकता। अनुमान करने का कार्य क्या है, ज्ञान का कार्य है। अनुमान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष के जो भेद है ना उसमें अनुमान भी एक भेद है। हाँ, जैसे आगम प्रत्यक्ष, अनुमान प्रत्यक्ष, वो सारे उसके भेद होते हैं। तो इसके कहते हैं ये दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के भी अनुमान प्रत्यक्ष है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, ऐसा ऐसा, उसके अविषयभूत जीव के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाले लिंग के ग्रहण का संभव नहीं है। फिर आगम से भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि अपौरुषेय आगम का अभाव है। यदि जीव को जड़ मानेंगे तो आगम से भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता, क्यों आगम किसने बनाया है, भगवान के द्वारा उसकी बात आई है और गणधरों ने उसकी रचना की है, यानी उसको अपौरुषेय नहीं कह सकते, किसी पुरुष ने नहीं बनाया ऐसा नहीं कह सकते उसको, क्योंकि अपौरुषेय आगम का अभाव है। आगम जो है वो तो गणधरों के द्वारा रचित है और आगे आचार्यों की परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए वो अपौरुषेय नहीं है। यदि पौरुषेय आगम से उसका ग्रहण माना जावे तो वह भी नहीं बन सकता। कोई कहते आगम तो पौरुषेय है इसलिए उसका ग्रहण करो, तो कहते कि सर्वज्ञ के बिना पौरुषेय आगम का अभाव है। आगम का ओरिजिन ही सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ अगर नहीं बताते दिव्य ध्वनि में तो कोई आगम की रचना भी नहीं करते। तथा पहले जब सर्वज्ञ सिद्ध हो तब उससे पौरुषेय आगम सिद्ध हो, और जब पौरुषेय आगम सिद्ध हो तब उससे सर्वज्ञ की श्रद्धा सिद्ध हो। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष का प्रसंग भी आता है। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ है इसलिए पौरुषेय आगम है, और पौरुषेय आगम मैंने गणधर के द्वारा रचित किया ना, वो पुरुष कहा हुआ, सर्वज्ञ ने बताया और किसी ने आगम की रचना की, और आगम की रचना करने वाला वो सर्वज्ञ के ही आगम की रचना करेगा, इसलिए उनसे वो सिद्ध है। इसको क्या कहते हैं, अन्योन्याश्रय दोष, इतरेताश्रय भी कहते उसको। इतरेता यानी क्या, अन्योन्य आश्रय दोष, ये है इसलिए ये सिद्ध हुआ, और इसकी सिद्धि ये है इसलिए इसकी सिद्धि हुआ। तो ये कहाँ सिद्धि हुई, उस दिन मैंने शाम को बात की थी ना, आप कहाँ रहते हैं, भाटिया हॉस्पिटल के सामने, वो मिलिंद भाई ने उत्तर दिया था, भाटिया हॉस्पिटल कहाँ है, मेरे घर के सामने। तो वो हम कैसे ढूंढे उसको, उसकी सिद्धि कैसे होगी। वैसे यहाँ कहते हैं पौरुषेय आगम सर्वज्ञ के द्वारा होता है, और सर्वज्ञ है क्योंकि पौरुषेय आगम की उनके द्वारा सिद्धि होती है, ये कोई सिद्ध करने का तरीका नहीं है। इस कारण जीव नहीं है क्योंकि वह समस्त प्रमाणों की विषयता से रहित है। इस प्रकार प्रसंग प्राप्त जीव का अभाव न हो एतदर्थ जीव सचेतन है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जीव यदि अचेतन मानेंगे तो ये सारे ही प्रसंगों का ये प्रसंग उपस्थित होते हैं। हाँ बोलो, पढ़ा, उसी को पढ़ा कर सुना ना, इतरेतर आश्रय या अन्योन्य आश्रय उसी को कहते हैं कि अन्योन्याश्रय दोष का प्रसंग आता है, ये समझाने के लिए उन्होंने ब्रैकेट में वहां डालकर बताया है कैसे आता है वो। अब आगे, इसके अतिरिक्त जीव सचेतन है क्योंकि सचेतना के बिना ज्ञान के अभाव का प्रसंग आता है। वह इस प्रकार से जीव ज्ञान का उपादान कारण नहीं है क्योंकि चैतन्य से रहित उसके ज्ञान उपादान कारणता का विरोध है, अथवा अचेतन होते हुए भी उसको ज्ञान का उपादान कारण मानने में यदि कोई विरोध नहीं माना जाए। देखो क्या कहते हैं, जीव को सचेतन क्यों माना, क्योंकि वो ज्ञान आकर मिला, इसलिए ऐसे ये उल्टी पुल्टी जो कुछ मान्यता है उनका यहाँ निराकरण हो रहा है। कोई क्या मानता है, जीव ज्ञान का उपादान कारण नहीं है क्योंकि चैतन्य से रहित है वो, और उसके ज्ञान उपादान कारणता का विरोध है। या कोई क्या मानता है, अचेतन होते हुए भी वो ज्ञान का उपादान कारण है, ऐसे अगर कोई मानेगा तो, और उसमें कोई विरोध नहीं आता ऐसा अगर माना जाए तो, आकाश भी उसका उपादान कारण हो जावे। वो ज्ञान किसी से भी मिल सकता है और कोई भी उसका उपादान कारण हो सकता है। अभी बात है ना, खंभा भी हो सकता है उपादान कारण, क्योंकि ज्ञान उसमें जाकर मिला और उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि अमूर्तत्व सर्वव्यापकता और अचेतनता की अपेक्षा जीव से आकाश में कोई विशेषता नहीं है। ये कौन से जीव की, यदि जीव को अचेतन माना जावे तो जीव भी अमूर्त है आकाश भी अमूर्त है, वो भी सर्वव्यापक है, ये भी जो कुछ है सर्वव्यापक है, वो भी अचेतन है, और हमने जीव को भी अचेतन माना यदि तो आकाश और जीव में क्या डिफरेंस है, दोनों समान हो गए, और फिर भी ज्ञान का उपादान कारण मानो उसको, तो ये बात बन नहीं सकती। यदि कहा जाए कि आकाश शब्द का उपादान कारण है, यही उसमें जीव से विशेषता है, ये शब्द का उपादान कारण मानते, आकाश से शब्दों की उत्पत्ति होती है मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। शब्द का उपादान कारण आकाश है ऐसे मानने वाले अभी बताए ना, ये तीन बातें जीव और अजीव आकाश में समान होगी, ऐसा ये विरोधी की बात चल रही है शंका करके। कोई मानेगा कि उसमें दोनों में कुछ विशेषता नहीं है, ये भी अमूर्त है वो भी अमूर्त है, ये भी सर्वव्यापक वो भी सर्वव्यापक, ये भी अचेतन वो भी अचेतन, तो कहते दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आकाश शब्द का उपादान कारण है और जीव ज्ञान का उपादान कारण है। दोनों ही बातें असंभव है ना, क्योंकि मूल में सब गड़बड़ी चल रही ना इसकी, कि जीव को ज्ञान में नहीं माना उसने, ज्ञान आकर बाहर से चिपक गया उसको, जुड़ गया ऐसा मानता है। सो वह भी नहीं हो सकता नीचे से छठी लाइन में, क्योंकि शब्द उपादान कारणत्व रूप हेतु साध्य के ही समान असाध्य है। क्या कहते है? हमें साध्य के जीव को चेतन सिद्ध करना है, और यहाँ वो जो अभी जो शंकाकार है वो क्या दलील दे रहा है? जीव अचेतन है, उसका साध्य क्या है? जीव अचेतन है, वो साध्य भी बिल्कुल असिद्ध ही है। वैसे आकाश भी शब्द का उपादान कारण है ही नहीं है, यानी वो जो सिद्धांत के लिए दलील दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, वो इट्सेल्फ रॉन्ग है। जो बात सिद्ध करना चाहते हैं वो भी गलत है, और उसके लिए जो कुछ वो सिद्धांत बता रहे हैं वो भी गलत है, यानी उसके दोनों ही जो हेतु दे रहा है, हेतु यानी हमने देखा ना दलील, उसके लिए प्रूफ जो दे रहा है वो बन नहीं सकता। और उपादान कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध है। इस कारण आकाशादिकों की अपेक्षा जीव के विशेषता स्वीकार करना चाहिए। क्या कहते हैं? आकाशादि यानी अन्य पांच द्रव्य अचेतन है, उनकी अपेक्षा जीव में कुछ विशेषता है, वो चेतन द्रव्य है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। अन्यथा जीव ही ज्ञान का उपादान कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान का उपादान कारण जीव ही है, अन्य है ही नहीं है। वह विशेषता भी चेतना को छोड़कर और दूसरी कौन सी हो सकती है? ये किस विशेषता के कारण वो ज्ञान का उपादान कारण है? तो चेतना के कारण, क्योंकि अन्य विशेषता में दोष पाए जाते हैं। यदि अन्य विशेषता के कारण ये ज्ञान का उपादान कारण है मानेंगे, जैसे अमूर्त है इसलिए ज्ञान का उपादान कारण है, यदि ऐसा मानेंगे तो अन्य द्रव्य भी अमूर्त है पुद्गल को छोड़कर। वो आता ना, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ये जीव का वर्णन है कि नहीं है? क्यों भाई, बराबर है ना ये लक्षण? हाफ हुआ तो पांच द्रव्य चिल्लाए मैं भी ऐसा हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा नित्य हूँ, अरूपी हूँ। एक रूपी द्रव्य को छोड़कर पांचों ही द्रव्यों ने कहा ये मेरे विशेषण है, आप बस जीव को कहा गड़बड़ मत करना। तो जीव ने क्या कहा? ज्ञान दर्शनमय, चेतना वाला है ना, ये उसकी विशेषता है। अन्य विशेषताओं के कारण वो ज्ञान का उपादान कारण नहीं है, चेतना के कारण वो ज्ञान का उपादान कारण है, क्योंकि अन्य विशेषता में दोष पाए जाते हैं। दोष पाए जाते हैं अन्य विशेषता के कारण वो जानता है, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य रूप का उपादान कारण है, उसी प्रकार जीव भी ज्ञान का उपादान कारण है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर रूप के समान ज्ञान के यावत द्रव्य भावी होने का प्रसंग आवेगा। देखो वो यावत द्रव्य भावी किसको कहा, नीचे के पैराग्राफ में, फिर हम ऊपर का पढ़ेंगे। जिन गुणों के परस्पर में कोई विरोध नहीं रहता वे उस द्रव्य के यावत द्रव्य भावी गुण कहलाते हैं, जैसे पुद्गल द्रव्य के रूप रस गंध व स्पर्श। इस कारण चेतना के समान ज्ञान भी यावत द्रव्य भावी गुण है। वो गुण है दो बार क्यों लिखा मालूम नहीं, उसमें दो बार है कि एक बार है? आपके पुस्तक में कितनी बार है? आगे आगे क्या लिखा है? हाँ, ये दो बार नहीं चाहिए, क्योंकि प्राकृत में दो बार नहीं है। अभी हम ऊपर का पढ़ेंगे। ये न्याय की भाषा है ना, ये तो अटपटी लगती है हमको, समझ में नहीं आता है क्योंकि हम तो बहुत आसान भाषा में पढ़े और ये सारी ग्रंथों की भाषा ऐसी होती है जो हमें इससे ज्यादा परिचय नहीं है ना, इसलिए ऐसा लगता है। देखो, अब हम पहली लाइन की दूसरी सेकंड हाफ देखते हैं। पर्याय भूत नील पीतादि रूप से व्यभिचार भी नहीं हो सकता, क्योंकि रूपत्व के प्रति समान जातीय रूप विशेष के वहां अवस्थान के समान, ज्ञानत्व के प्रति समान जातीय ज्ञान विशेष के जीव में भी सर्वदा अवस्थान का प्रसंग आता है, अतएव जीव सचेतन है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, ये पुद्गल के साथ उसकी तुलना की है। पुद्गल द्रव्य रूपी है ना? तो कहते रूप जैसा यावत द्रव्य भावी है, और उसकी पर्याय कैसी है, वहां नील पीत आदि उसकी पर्याय है। और ये उसको रूप विशेष कहा, रूप के पर्यायों को रूप विशेष कहा। तो कहते हैं रूपत्व के प्रति समान जातीय रूप विशेष के वहां अवस्थान के समान, यानी वो रूपी है तो उसके साथ नील पीत वगैरह उसके विशेष भी उसके साथ अवस्थाने ने रहते हैं, बराबर। वैसे ज्ञानत्व के प्रति वहां रूपत्व लिया और यहाँ ज्ञानत्व लिया, ज्ञानत्व के प्रति समान जातीय ज्ञान विशेष के, ज्ञान विशेष यानी विशिष्ट ज्ञान उसकी पर्याय, विशिष्ट पर्याय, जीव में सर्वदा अवस्थान का प्रसंग आता है, ये हमेशा उसको रहने का प्रसंग आता है। यानी वो पुद्गल के साथ जैसे वहां उन्होंने कहा कि रूप का उपादान कारण है, वैसे ये उपादान कारण है ऐसा कहना भी उचित नहीं है, ये बात वहां सिद्ध हुई। अब मैं भी इससे ज्यादा समझाने में असमर्थ हूँ यानी अपनी सिद्धांत रोशिका की भाषा में तो मैं नहीं समझा पाऊंगी। अब ये नीचे का हम पढ़ेंगे। इतनी बातें अलग अलग हेतु देकर जीव सचेतन ही है अचेतन नहीं है ये बात सिद्ध करते हैं। जिन गुणों के परस्पर में कोई विरोध नहीं रहता वे उस द्रव्य के यावत द्रव्य भावी गुण कहलाते हैं, जैसे पुद्गल द्रव्य के रूप रस गंध व स्पर्श। हमने कहे ना वो तो अविनाभावी संबंध है वो, और द्रव्य के साथ उसका नित्य तादात्म्य संबंध है, उसको यहाँ यावत द्रव्य भावी कहा। इस कारण चेतना के समान ज्ञान भी यावत द्रव्य भावी गुण है, क्योंकि चेतना के साथ ज्ञान का कोई विरोध नहीं है। और भी ज्ञान जीव का यावत द्रव्य भावी गुण है, क्योंकि चेतना की अपेक्षा उपयोग के प्रति उसकी एकता है, और एक उपयोग का प्रमेय के भेद से द्वित्व को प्राप्त होकर भिन्न द्रव्य में रहना उचित नहीं है, क्योंकि वैसा होने में विरोध आता है। अतएव ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव है यह सिद्ध हुआ। यानी जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है यह बात इसके साथ सिद्ध होती है, क्योंकि चेतना की हमने दो भेद किए ना, ज्ञान और दर्शन। और पहले तो क्या जीव अचेतन है और ज्ञान उसके साथ आकर मिला है, ऐसी बात वहां हो रही थी, उसको यहाँ उसका निराकरण कर दिया है। तथा सूर्य प्रभा के समान ज्ञान स्तोक द्रव्य गुण व पर्यायों से संबद्ध नहीं है। स्तोक यानी अल्प, ज्ञान का स्वभाव अल्प द्रव्य पर्यायों से संबंध नहीं है, क्योंकि समस्त पदार्थ अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मात्मक है, क्योंकि उसके बिना उनकी सत्ता घटित नहीं होती इत्यादि। अनुमान ज्ञान सब द्रव्य व पर्यायों में रहने वाला पाया जाता है। इस कारण संपूर्ण द्रव्य एवं पर्यायों को विषय करने वाले ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव है, ऐसा सिद्ध होता है। क्या कहना चाहते? देखो, सूर्य प्रभा ने सूर्य की किरणें जैसे थोड़े ही क्षेत्र में व्याप्त है, ऐसा ज्ञान थोड़े ही पदार्थों को जानता है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं। ये बात बता रहे ज्ञान का स्वभाव क्या है। तो कहते ज्ञान किसको जानता है, तो पदार्थों को जानता है। सभी पदार्थ कैसे है? अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मात्मक है, क्योंकि उसके बिना उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। जो है वो सत्ता वाला पदार्थ है, तो सत्ता यानी सत है, तो वो कैसे होता है? तो वो पूरे द्रव्य के सारे गुण उसमें होंगे, तो द्रव्य अनेकांतात्मक होता है, यानी प्रत्येक द्रव्य अनेकांतात्मक है, उत्पाद वे ध्रुवात्मक है। तो ऐसा जो है उसकी सत्ता है, तो द्रव्य है तो वो अनेकांतात्मक है, तो उसके इतनी अनंत गुण होंगे, अनंत पर्याय, ये अनुमान से वो जानता है ना। विश्व में छह द्रव्य है, तो प्रत्येक उत्पाद वे ध्रुवता सहित है, प्रत्येक द्रव्य जो है अनंत गुण वाला है, प्रत्येक समय में उसकी पर्याय होती है, ये आगम में हमने जाना है और अनुमान से भी हम जानते हैं। तो अनुमान ज्ञान सब द्रव्य व पर्याय में रहने वाला पाया जाता है। इस कारण संपूर्ण द्रव्य एवं पर्यायों को विषय करने वाले ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव है, ऐसा सिद्ध होता है। यानी जो सर्वज्ञ की सिद्धि हो रही है, वे सर्वज्ञ भगवान सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाले, ये बात सिद्ध हो रही है, क्योंकि ज्ञान का जो स्वभाव है पूर्ण विकसित हो गया है। वहां पर सर्वज्ञ की सिद्धि हम कर रहे थे, वहां पहले तो पहले जीव ही अज्ञान अचेतन है, ये बात से वहां बात आई थी, क्योंकि अलग अलग उसने वो सब हमने देखे ना मान्यताओं का यहाँ निराकरण चल रहा है। पहले बात क्या उठाई थी, जिनेन्द्र भगवान को हम देख नहीं रहे और सौधर्म का भी पता नहीं है, तो वो उसको जीव माने कैसे माने? उसका जो सर्वज्ञ स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव कैसे सिद्ध हो जावे, और किसी जीव में वो होता है ये भी कैसा सिद्ध हो जावे, उसकी ये सारी प्ररूपणा चल रही है। अब कहते हैं पुनः कषाय ज्ञान की विरोधी है। अब यहाँ क्या सिद्ध करेंगे आगे? जिनकी कषाय बिल्कुल नहीं है उनका ज्ञान परिपूर्ण है। जो निर्दोषी है वही निरावरण हो सकता है, क्योंकि हमने देखा वितराग कब होता है, कौन से गुणस्थान में पूर्ण वितराग है? बारहवें में। और पूर्ण ज्ञानी यानी सर्वज्ञ तेरहवें गुणस्थान में। तो जो निर्दोषी है वही निरावरण हो सकता है, ये बात भी सिद्ध होती है। जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ होगा। तो यहाँ कह के थे कषायें ज्ञान की विरोधी है, क्योंकि कषायों की वृद्धि और हानि से क्रमशः ज्ञान की हानि और वृद्धि पाई जाती है। जहाँ कषाय बहुत है वहाँ ज्ञान अल्प है। कषाय जीव के गुण नहीं है, क्योंकि यावत द्रव्यभावी ज्ञान के साथ उनका विरोध अन्यथा घटित नहीं होगा। क्या कहते हैं? अब यावत द्रव्यभावी का अर्थ हम अपनी भाषा में नित्य तादात्म्य वाले लेंगे। कषाय जीव का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान कैसा है? नित्य है जीव में। वैसा ज्ञान के साथ अगर अभी कषाय भी अगर नित्य होती तो ज्ञान के साथ उसका विरोध नहीं आना चाहिए था। जहां ज्ञान का पूर्ण विकास है वहां कषाय नहीं देखने में आती। अभी बताए ना, कषायों की वृद्धि है वहां ज्ञान की हानि है, जहां कषायों की हानि है वहां ज्ञान की वृद्धि है। यदि दोनों ही जीव के गुण होते तो ऐसा विरोध उसमें देखने में नहीं आना चाहिए था, परंतु ऐसा विरोध तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, नहीं हमारे अनुभव की बात है ये। हम कहते हैं कषाय से क्रोध से अंधा हुआ, अभी उसको कुछ विवेक नहीं रहेगा, ऐसा हम भी कहते हैं ना। ये कषायों के अधीन होकर जो अपराध करते, खून मारा मारी जो कुछ करते, तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती, तब कषाय हावी हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, यदि वो जीव का गुण होता तो ज्ञान के साथ उसका ऐसा उल्टा प्रोपोर्शन नहीं होता। प्रमाद असंयम भी जीव गुण नहीं है, क्योंकि वे कषायों के कार्य है। बराबर है ना, वो कषायों के अधीन होता है असंयम और प्रमाद भी। अज्ञान भी जीव का गुण नहीं है, कषायों का कार्य बताए, क्योंकि हमने देखा जब असंयम टाला जाता है फिर भी कुछ कषाय तो रहती है, ये कषायों का कार्य है, असंयम है प्रमाद है। अब कहते ज्ञान भी जीव का गुण नहीं है, अज्ञान भी जीव का गुण नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का प्रतिपक्षी है। अज्ञान यानी ज्ञान का नहीं होना कहो या मिथ्या ज्ञान कहो, वो भी प्रतिपक्षी है ना उसका। अज्ञान ज्ञान का अभाव, ये ज्ञान का प्रतिपक्षी है। मिथ्यात्व भी जीव का गुण नहीं है, क्योंकि वह सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी एवं अज्ञान का कार्य है। इस कारण ज्ञान दर्शन संयम सम्यक्त्व क्षमा मृदुता आर्जव संतोष और विराग आदि जीव स्वभाव है, यह सिद्ध हुआ। देखो कहाँ से क्या सिद्ध कर दिया, ये सारे जीव के स्वभाव है, वो कहीं बाहर से नहीं लाना है, ये कषायों के कार्य हो रहे हैं। तो सबसे कषाय कम करना चाहिए कि नहीं, अश्विन भाई आप बोलो, नहीं करना है? हाँ कहाँ आप, कैसे नहीं होगी, कैसे होंगे आत्मा, पहले राग है हमारे में, तो कैसे अंदर चले जाएंगे। हाँ हो रही है, ज्ञान भी पर्याय में होने वाला है, कैसे करेंगे। मगर देखो अपने में उत्पन्न होने वाले जो राग है उनसे पहले में पहले भेद ज्ञान करना है। हम तो क्या सोचते हैं, अरे कषाय नहीं करना चाहिए, या कषाय जिन कारण से होते उन निमित्त को हटाना चाहते हैं, वो कषायों को कम करने का पद्धति नहीं है क्या। या हम ये नहीं करें क्यों, या हमको बहुत कषाय होते हैं इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। बच्चों को हमने दूर रखा है क्यों, ये बहुत कषाय होते हैं, ये कषाय कम करने का कारण नहीं है, ये हमने निमित्त से हमने कषाय होते ये मान लिया है, ये अपने अभिप्राय कहाँ क्या पड़े हैं, तत्व निर्णय नहीं है। और राग हो गए शुरू की अवस्था में, एकदम जाके अभी राग हो रहे चलो आत्मा मिलीन हो जाए राग कम हो जाए, ये बात नहीं होती। होते हुए को अपने से भिन्न जानना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि राग है ये दुख रूप है, ये मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, ये इसको जानने वाला मैं हूँ, ख्याल है ना। नहीं तो शास्त्र में पढ़कर वो अपने में लीन हो जाओ, काहे का लीन हो जाओ, यहाँ राग द्वेष कर रहे और अपने में कैसे लीन होगा वो। होते हुए को अपने से भिन्न जानना है, अभी शरीर की क्रिया चल रही है, हाथ पैर हिल रहे, अरे स्थिर हो जाओ, ऐसा नहीं है, अरे वो हिलता है तो अपने से हिलता है, ये मेरा कार्य नहीं, ये पहले जानना चाहिए ना, इसका निर्णय पहले होना है। हम कहेंगे नहीं नहीं हाथ पैर मत हिला, ऐसा बैठ जाओ तो हो जाए, ये नहीं है तरीका। भेद ज्ञान ये मूल तरीका है, भेद ज्ञान से ही सम्यक तो होगा। जब भेद ज्ञान है ये मेरा कार्य नहीं है तो उसके प्रति क्यों लक्ष्य जाएगा, तो सहज आत्मस्थिरता हो जाएगी। ये अपने में स्थिर होना चाहिए, मुझे अंदर उपयोग ले जाना चाहिए, इसमें ही अपने पकड़ है कहीं पे, ख्याल है ना, ये कोई तरीका नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते?
देखिए यहाँ पर यही बात बताई है ये जो अभी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, नीचे से दूसरे लाइन में लिखा है कि अज्ञान का कार्य है क्या? मिथ्यात्व। अब यहाँ हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये जो राग द्वेष जो है उनको कम करे, तो उनको कम हम कर ही नहीं सकते। पहले में पहले जैसा आपने बताया कि भाई आत्मा में लीन होना चाहिए, तो ये आत्मा में लीनता जब होगी कि जब आत्मा का हमें पहले बाह्य ज्ञान होगा, यानी भाई मैं राग से भिन्न हूँ ये भेदक ज्ञान होगा, वही अज्ञान के विरुद्ध पार्टी है ना ज्ञान होना, जिसको हम भेद ज्ञान कहेंगे। तो यहाँ पर भी यही बात बताई है, अज्ञान भी तीसरे लाइन में, अज्ञान भी जीव का गुण नहीं है क्योंकि वह ज्ञान का प्रतिपक्षी है। आगे बताते हैं, मिथ्यात्व भी जीव का गुण नहीं है क्योंकि वह सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी एवं अज्ञान का कार्य है। देखो परसों एक भाई साहब आए थे हमने अपने यहाँ, वो कह रहे थे कि ये कोई फला फला व्यक्ति की बात कर रहे थे, वो इतना धर्म के बारे में इतना जानकार है, ये है वो है, वो अपने को स्वयं को तो प्रतिमाधारी कहते हैं, सातवीं प्रतिमा उन्होंने धारण की है, फिर भी अभी उनको ये बात कैसी नहीं बैठती है, क्या कारण हो सकता है? तो वहां तो एक ही बात हमने बताई थी कि मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, इसके लिए नहीं हो रहा है। दूसरा उत्तर यहां मिल गया मुझे कि अज्ञानता के कारण, और अभी यहां तो मूल बात बता रहे कि अज्ञानता से ही मिथ्यात्व होता है, यानी मिथ्यात्व का तीव्र उदय ये तो ऊपर ऊपर की बात हुई, ये अज्ञान है, यानी हमें भेद ज्ञान नहीं है, यही बात हो गई ना,
यानी शास्त्र ज्ञान नहीं वो बात नहीं है, शास्त्र पढ़ने वाले हैं पर उसका सही मर्म नहीं पकड़ पाते,
यानी भेद ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, भेद ज्ञान नहीं हो रहा है कि मैं जुदा हूँ और ये राग जुदा है। ऐसा जब तक इस जीव को नहीं होगा तो वो तो राग को कम करने में, कषायों को कम करने में ही जुटा हुआ है। क्यों हम जेब में छुट्टे पैसे रखते हैं? क्यों कंडक्टर के साथ झगड़ा नहीं होवे, अपनी कषाय नहीं बढ़े, ख्याल में आए? तो ये क्या बताता है कि हम कषायों को दाबना चाहते हैं, कषायों को कम करना चाहते हैं, क्यों कैसे? तो मेथड इज रॉन्ग, हमें जो प्राप्त करना है वो तो बराबर है कि भाई कषाय कम होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ मूल बात तो ये है कषायों को कम करने का तरीका अज्ञान है, उसको दूर करना।
हम निमित्तों को दूर करना चाहते हैं।
देखिए जब ही हमें भेद ज्ञान, भेद ज्ञान यानी मैं राग से भिन्न हूँ ये भेद ज्ञान हुआ ना भाई। देखो जब पहले जानोगे बाद में श्रद्धा करोगे कि पहले श्रद्धा होगी?
कषाय बाकी है ना, उसकी जाति पहचाननी चाहिए। हाँ। वो अनंतानुबंधी वाले है क्या, कैसे है, ख्याल है ना?
पहले ज्ञान होगा। हाँ। बाद में श्रद्धा होगी ना, कैसा होना ही दोनों साथ में।
अनंतानुबंधी वाले नहीं रहेंगे, अभी जो चौथे वाला है उसके अनंतानुबंधी नहीं, वो तो होते ही है, वो तो होते ही ना, वो तो अपने आप को भी पता चलेगा। हाँ होते ही है, परंतु वो कैसे होते हैं, यानी केवल बाह्य में हमें कषाय कम दिखाई दी, ये तो दूसरे के कुछ ज्ञान का विषय नहीं है ना। बाहर से कुछ विशिष्ट कषाय कम दिखाई दे इसलिए वो उसको भेद ज्ञान है, ऐसा भी नहीं। हाँ परंतु भेद ज्ञान होने, हाँ क्योंकि हमें वो अभी नारकी की तरफ देख के क्या बताएंगे हम, इसके तो बाह्य में सब कुछ चल रहा है, इसको भेद ज्ञान है कि नहीं है? यदि वो सम्य दृष्टि है तो भेद ज्ञान हो रहा है, वहाँ राग विशिष्ट राग चल रहा है, परंतु अनंतानुबंधी का है कि नहीं वो बाहर देखने वालों को पता नहीं चलेगा। अभी जो समय दृष्टि है मान लेते हैं, उसको वो अनिति वगैरह कोई करता है तो या कोई खोटा काम करते तो उसको क्रोध आना संभव है, वो नहीं आएगा, क्रोध आता है इसलिए ये बात है, ऐसा हम उसको अनुमान ऐसा गलत नहीं करना उसको। अनंतानुबंधी की जाति का है कि नहीं ये
देखे,
ये राम, तो देख कर वो दूसरा अज्ञानी उसको डिसाइड नहीं कर सकेगा।
नहीं नहीं, राम को भी अपने भाई के प्रति इतना राग था, वो कषाय नहीं गिनेंगे क्या? यानी कषायों के हम उल्टा रिवर्स में मत आना, ऐसा ये उज्ज्वला कह रही है,
यानी उसकी जाति। हाँ हाँ होता है,
बिल्कुल होना चाहिए, तीन बातें हैं ना। नहीं नहीं, तीन बातें एक साथ हो,
ये होता ही है, उसी को तो भेद ज्ञान
कह रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, तीनों बातें एक साथ होगी। देखो, भेद ज्ञान होगा तब सम्यक श्रद्धा भी होगी, और चारित्र गुण में जो स्थिरता, कोई जो आंशिक है, उसके कारण अनंतानुबंधी उतर जाएंगे ना, वो तो होते ही है तीनों साथ में। अब जिसको पहला कहना हो तो कहो कि भाई कषाय कम होती है, लेकिन कषाय कम होने से, यानी कम करने की हम इच्छा रखने से, वो कषाय कम नहीं होते हैं, यही तो बात है।
देखो, हम जिसको अपना मानते हैं उसके संबंध में हमने कुछ ना कुछ विचारे चलती है, उसके संभालने का जो कुछ है। अभी अपना नहीं है, घर की बात लेते हैं, अपना घर माना तो चलो इसको रंग दे दो, चलो ये करो वो करो, सब बातें होगी। या हम इसको छोड़कर दूसरे घर में जाएंगे, तो अभी यहाँ कौन सा रंग देना, क्या कलर करना है, वो तो उसके विकल्प भी नहीं आएंगे। तो राग को जब तक अपना मान रहे, उसको अच्छा मान रहे, करने जैसा मान रहे, तो वैसे विकल्प भी आते रहेंगे। बाद में विकल्प नहीं आते वो बात नहीं, अभी शुभ राग तो आते रहेंगे। समय दृष्टि को भी, मुनियों को भी, हम तो अभी देख रहे हैं प्रवचन सार में, उनके भी ये शुभ राग आते हैं। तो क्या राग से उनको वेद ज्ञान नहीं है? है, बिल्कुल है, परंतु विशिष्ट प्रकार के अशुभ राग अभी उनके नहीं आ रहे मुनियों के लिए। अब नीचे की भूमिकाओं में, वहां भी क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तो सभी चल रहे हैं, परंतु उसमें वो उस जाति के नहीं आएंगे जो अनंतानुबंधी है, उस जाति के नहीं आएंगे। वो हम बाह्य डिग्री से उसको नहीं माप सकते, मगर होगे कषाय अगर नहीं कम हो गए, क्योंकि उसके प्रति अपनत्व छूट गया तो वो क्यों उसकी चिंता करेगा। आने योगे आएंगे, जाने योगे चले जाएंगे, उसकी कोई उसको अभी फिक्र नहीं है। जब हम उसको भला मानते हैं, करने जैसा मानते हैं, तो उसकी पकड़ है, विराग की भी पकड़। आप ऐसा कहना, अरविंद भाई का ऐसे कहना, वो हो जाएगा करके क्या झालेस पाइये, मैं झालेस पाइये, परंतु वो केलेस पाइये ऐसा है कि झालेस पाइये ऐसा है? वो तो होता ही है, वो तो स्वरूप है मोक्ष मार्ग का, उसमें कोई डाउट ही नहीं। उसमें अगर कोई शंका पकड़ता है, शंका है उसको उसके संबंध में, तो उसका भी सम्यक तो नहीं, उसको अभी वेद ज्ञान ही नहीं ऐसा कहेंगे, ऐसी कोई शंका की बात ही नहीं। ये ऐसी शंकाएं उठेगी तो जिसका तत्व का अभ्यास नहीं है, उसको ऐसा लगता है ये स्वच्छंद का पोषण कर रहे, ये राग कर रहे और कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। ये सहज ही ऐसा सुमेल होता है। अरे दूसरे को दिखाई दे, नहीं नहीं, उसकी चिंता ही नहीं करना है अपने को। वो तो दिखाई देगा तो आगे चलकर, वो तो जब व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, अभी लड़कियों का ब्याह कर रहा है, जो कुछ बातें है सब सांसारिक, उसकी सभी बातें चल रही है, और उसका अंदर ही अंदर उसका अभिप्राय क्या है उसके पीछे, ये तो सामने वाले को पता चलेगा ही। ऐसी बात नहीं, चलेगा भी नहीं भी चलेगा, अभिप्राय कब होता है, उसकी बातों में कुछ पकड़ में आता है इसका ऐसा अभिप्राय है या नहीं है। परंतु जो हम, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, ये तो बातें वैसी होगी, उसकी भाषा तो नहीं बदलने वाली है, ख्याल है ना ये तो। हाँ, ये उसमें भी बहुत बातें आती है, क्योंकि असंयत है। अभी हम देखते हैं कोई स्वर्ग का जीव है, नवे ग्रेवे का, और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि वाला है, चौथे गुण स्थान वाला, और कोई सातवें नरक का समय दृष्टि है, कोई तिर्यंच समय दृष्टि है, कोई मनुष्य है। अभी सबके बिहेवियर बाह्य अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो वो कितना भला है स्वधर्म वाला, और सातवें नरक का वहाँ झगड़ा वगैरह सब चल रहा है उसके, वहाँ के अनुसार उसके क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चल रहे हैं। ख्याल, ये तो हम बाह्य उसके कषायों से, लेशाओं से कुछ उसका अनुमान नहीं कर सकते, और अनुमान करने की चेष्टा भी नहीं करना। ये दूसरा है कि नहीं कि अरे मुझे कैसे मार्ग प्राप्त हो सकता है ये देखना, तो सामने समय दृष्टि है कि नहीं, अरे मैं शुद्धात्मा हूं क्या नहीं, इसका निर्णय नहीं है, और सामने वाला कैसा है उसकी बात चलती है, क्या करे, वो है या नहीं है उसे अपना कुछ लेना देना, उससे कोई अपना भला बुरा होने वाला नहीं है। ये समाज में क्या क्या बातें होती है ना, उसकी चर्चा है, किसी किसी के प्रति मैं ऐसा उत्तर नहीं दे रही हूँ। ये ऐसा लोग अज्ञानी है ही पहले से, वो और भी ऐसा माने क्या, उसमें क्या अपना। हम अभी ये जो रहस्यपूर्ण बात अपने को पता चली है, तो इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, दूसरों को क्या लगेगा हम ऐसा बोलेंगे, तो अभी वो तो पहले से अज्ञानी और अज्ञानी रहेंगे और क्या होने वाला है उसमें। चलो हम आगे बढ़ेंगे, देखो क्या कहते हैं। इस कारण ज्ञान दर्शन संयम सम्यक्त्व क्षमा मृदुता आर्जव संतोष और विराग आदि स्वभाव जीव है, यह सिद्ध हुआ। इन स्वभावी जीव है, ये जीव का स्वभाव है। और अभी हमारे पर्यायों में दिख रहे इतने कितने तो विभाव दिख रहे उसका, सम्यक्त्व नहीं है तो मिथ्यात्व है, असंयम है, ये क्रोध है, मान है, माया वगैरह जो बातें हैं इसके आगे इसलिए ना क्षमा के, क्षमा स्वभाव है और क्रोध उल्टा उसका विभाव है, मृदुता ये अपना स्वभाव है और उसके अगेंस्ट कठोर जो है मान सब आर्जव संतोष वगैरह। अब हम आगे बढ़ेंगे। कर्म नित्य नहीं है क्योंकि अन्यथा जन्म जरा मरण शरीर व इंद्रियादि रूप कर्म कार्यों की अनित्यता बन नहीं सकती। यदि कर्म को नित्य मानेंगे तो जैसे है वैसा ही कंटिन्यू, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगे, ना शरीर में परिवर्तन होगा, ना भव पलटना होगा, ना अन्य भव का धारण होगा, ये चार गतियां वगैरह कुछ नहीं, जो है जैसा वैसा ही चलता रहेगा। ये उसके जो कर्म कार्य है ना, कर्मों के कार्य अनित्य है, पलटते रहते हैं, इसलिए कर्म भी अनित्य है ये सिद्ध होता है। हम भी देखते ना कभी साता का उदय कभी असाता का उदय, ज्ञानावरणा भी उसमें भी तीव्र और मंदता जो होती रहती है, तो ये उसकी अनित्यता बताने वाला है। कभी जीव एकेंद्रीय होता है तो कभी पंचेंद्रीय तक की पर्याय मिलती है। यदि कहा जाए कि जन्म जरादिक अकारण है, यदि कहेंगे कर्म विर्म कुछ नहीं होता, ये कारण रहित है, सो भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कारण के बिना कार्यों की उत्पत्ति का विरोध है। ये जन्म होता है, मरण होता है, फिर दोबारा कहीं जन्म लेता है, इसका कोई कारण तो होना ही चाहिए, और वो कारण है कर्म, और वो भी एक सरीखा नहीं होता, तो पलटते रहता है, उसका उदय बदलते रहता है, तो यहाँ उसके कार्य भी अनेक रूप से देखने में आते हैं। यदि ज्ञान दर्शनादिकों को उनका कारण माने तो, उनका यानी किसका, नहीं जन्म जरा मरण का, जन्म जरा मरण का कारण ज्ञान दर्शन है ऐसा माने तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि अन्यथा कर्म जनित कषायों के साथ उनका विरोध घटित नहीं होता। ये कषाय है वो भी कर्म जनित है, और ये जन्म जरा मरण आदि भी ज्ञान से होते हैं, तो ये कषाय भी ज्ञान से होने का प्रसंग आएगा। कर्मजनित कार्य ज्ञान से होते ऐसा माना ना पहले भी, और जो कारण के साथ अविरोधी है उनका उक्त कारण के कार्यों के साथ विरोध उचित नहीं है। यानी अभी कारण कर ज्ञान को माना कारण, तो जन्म जरा वगैरह सारे जो ज्ञान के कारण होते मानते हैं। अब ये कारण का कार्य क्या है, अभी हम कर्मों का कार्य क्या है, कषाय, तो उसके साथ भी ज्ञान का विरोध नहीं आना चाहिए था, परंतु यहाँ तो कषाय का और ज्ञान का विरोध हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि कारण के विरोध के द्वारा ही सर्वत्र कार्यों में विरोध पाया जाता है। कारण अलग अलग है इसलिए कार्य भी अलग अलग देखने में आते हैं। कारण का विरोध तो कार्य का भी विरोध, कार्य यहाँ किसको और कषायों पर घटित कर रहे हैं। अतएव मिथ्यात्व असंयम और कषाय कर्मों के कारण है यह सिद्ध हुआ। यानी कर्मों के कारण, कर्म के उदय के कारण ये बातें हो रही है। मिथ्यात्व असंयम और कषाय ये सारे कार्य है, वो कार्य किसके है तो कर्मों के हैं, और इनके कारण और नए कर्म बनते हैं, ऐसा भी समझना। सम्यक्त्व संयम और कषायों का अभाव कर्मक्षय के कारण है, क्योंकि ये मिथ्यात्वादिकों के प्रतिपक्षी है। पहले मिथ्यात्व संयम और कषाय लिया, वो कर्मों के कारण है कहा, और सम्यक तो संयम और कषायों का अभाव जो है वो कर्म क्षय के कारण है, उनके द्वारा वो कर्म का क्षय हो जाएगा। और कारण आदि कार्य को उत्पन्न करते ही नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। उनके कारण कर्म का क्षय होता है, उनको कारण कहा है। हमने देखा था नए कर्मों की बात और पुराने कर्मों की बात, ऐसे दोनों तरफ से कार्य कारण लगाते हैं। जीव के जो मिथ्यात्व राग आदि जो है वो कर्म के कार्य भी है और कारण भी है, पुराने कर्मों के कार्य है और नए कर्मों के कारण है। और कारण आदि कार्य को उत्पन्न करते ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। जहां कारण है वहां उसका कार्य भी पाया जाएगा। अतएव किसी काल में किसी भी जीव में कारण कलाप सामग्री निश्चय से होना चाहिए, और इसीलिए किसी भी जीव के पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति होना चाहिए। क्या कहते हैं ये, तो कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं सकता उसकी बात चल रही है। तो जहाँ कारण है, क्या कारण है, ये पूर्ण निर्दोषी हो गए ना, न मिथ्यात्व है, ना असंयम है, ना कषाय है, उसकी पूर्ण रीति से उसका अभाव हो चुका है, तो वहाँ कारण है तो उसका कार्य भी कहीं पाया जाना चाहिए। कार्य कलाप यानी कारण कलाप यानी सभी कारण। देखो इसलिए किसी भी जीव के पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि स्वभाव वृद्धि का तारतम्य पाया जाता है। क्या कहते हैं स्वभाव वृद्धि का तारतम्य, ने हम देखते हैं सम्यक हुआ है, संयम हुआ है, वो ज्ञान की वृद्धि भी पाई जाती है, कषाय की हानि भी देखी जाती है, स्वभाव की वृद्धि होते हुए देखी जाती है, ये तारतम्य। कहीं कहीं स्वभाव की हानि है, कहीं वृद्धि होते होते बहुत वृद्धि देखी जाती है, तो ऐसे पूर्ण वृद्धि पूर्ण जो स्वभाव है वो किसी जीव में प्रकट होना ही चाहिए। इसी से सिद्ध होता है ना, तारतम्य जहाँ है वहाँ पूर्ण रूप से भी प्राप्ति होनी ही चाहिए। जैसे खान के कनक पाषाण में, खान यानी खदान, मराठी में उसको खान कहते, हिंदी में भी कहते होंगे, हाँ खान कहते, कनक पाषाण यानी सुवर्ण पाषाण, वो तो उसको क्या, वो तो मिट्टी जैसा पत्थर जैसा दिखेगा परंतु उसमें सोने का अंश रहता है, तो उसमें से फिर वो प्योर किया जाता है, सोना निकाला जाता है। तो कनक पाषाण में स्थित सुवर्ण अथवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमंडल के, इसमें क्या है और शब्द है क्या, मंडल के समान, जैसे लिखा है ना, तो जैसे लिखा है तो हाँ, तो यहाँ कहते हैं उसके लिए दृष्टांत क्या दिया, स्वभाव वृद्धि कम ज्यादा पाई जाती है। जैसे कनक पाषाण में स्थित सुवर्ण, कनक पाषाण में कहीं सुवर्ण का जो सोने का अंश है कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और शुक्ल पक्ष के चंद्रमंडल, शुक्ल पक्ष का चंद्रमंडल जो है वो भी बढ़ते हुए देखा जाता है, कहीं कम है कभी ज्यादा, वृद्धि होती होते तो वृद्धि होते होते पूर्णिमा के दिन पूर्ण वृद्धि होती है ना, वैसे यहाँ स्वभाव की भी वृद्धि होनी चाहिए। कषाय का भी पूर्ण विनाश किसी भी जीव में होता है, क्योंकि उसकी हानि का तारतम्य पाया जाता है। पहले तो वृद्धि का तारतम्य बताया, स्वभाव वृद्धि का, तो ज्ञान बढ़ते बढ़ते पूर्ण सर्वज्ञ हो सकता है, कषाय की हानि होते 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 पूर्ण रूप से हानि संभव है। जैसे खान के सुवर्ण में हीयमान मल कलंक का अथवा दुर्बल मान कलंक का तारतम्य पाया जाता है। ये खान में जो सुवर्ण है उसमें से जब उसको तपाते हैं तो वो मल कलंक कम होते चला जाता है, उसको तपाते हैं ना वो, तो उसमें से प्योर सोना निकालने के लिए उसके मल की कमी होती चली जाती है। हो गया, अभी 10 बज गए, बाकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।